चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंहभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरुभक्तिसेन। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभांसुते प्रणमामि हरि श्री। आ देवी काकू भरगद गदयाच्य वाच जाचे निपत्त भूमि दंडवत उद्भटाति। अस्य प्रसादमभद्रस्य जनस्य कृष्ण गंधर्विके तव गणे गणनं विधि। अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मंदेकृतेन्दी परम जट्टञ्जाकुचरोचि संविदौतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेमुदां। भक्त्याविहीनापराधलक्ष्यै चित्तास्य कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणार्थ। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय कलभक्ताय नमः। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे मां चरणं। श्री श्री राधारमण जी के गोस्वामियों का बहुत आभारी हूँ। मैं सब प्रकार से अयोग्य होने पर भी जहाँ मूर्धन्य विद्वान यहाँ पर रहते हैं, स्वयं गोस्वामी लोग बड़े विद्वान लोग हैं, तो इस पर भी मैंने भक्ति विनोद ठाकुर के आत्मचरित्र में मैंने देखा मसूदन गोस्वामी जी के बड़े आभारी हुए। हमारा समस्त गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इन लोगों का आभारी है। जब जब भक्ति विनोद ठाकुर जी को और जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाल श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी को कोई भी आवश्यकता हुई, सारा बंगाल का समाज स्मार्ट समाज उनका विरुद्ध हो गया, उस समय में इन लोगों के पृष्ठपोषक राधारमण के ये श्री मसूदन गोस्वामी जी। मैं सुन करके और भी अभिभूत हुआ। कल हमारे परम पूजनीय गौरकृष्ण जी और पद्मनाभ जी कह रहे थे कि श्री मसूदन जी की गोस्वामी जी की डायरी में ये सब लिखे हुए हैं। कभी देखूंगा, ये सब बड़ी अच्छी चीजें हैं। तो मैं न तो विद्वान हूं न कथावाचक हूं। गुरु जी ने मुझे कृपा करके कुछ साधारण गांव से भक्ति साधन करने के लिए आदेश दिया, थोड़ा सा प्रचार करने का भी आदेश दिया, प्रचार हमें नहीं। तभी हमारे पूज्य विशंभर जी गोस्वामी बहुत ही मुझे स्नेह करते थे। वैसे ही हमारे विद्वत वर्ग गोपकिशोर जी मुझे बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर श्री राधारमण की कृपा ग्रहण करने के लिए मुझे अवकाश दिया। मैं कुछ पाठ प्रवचन करने के लिए नहीं आया, मैं कुछ निवेदन करने के लिए आया। इच्छा थी जो सुनूं, तो सुजोग तो नहीं हुआ। मैं विशेष करके यहाँ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की महिमा और उनको श्री चैतन्य महापुरुष जी की जो करुणा वर्षित हुई उसे बहुत अभिभूत हूँ। उन्हीं का ये निदर्शन है चैतन्य महाप्रभु जी की करुणा का और गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रेम भक्ति का श्रेय है कि श्री राधारमण जी यहाँ पर प्रकटित है। विशेष करके यहाँ की सेवा परिपाटी इतनी सुंदर है, भव्य है कि यहाँ के हमारे श्री श्री गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन इत्यादि प्राचीन श्री विग्रह, ऐसा मन में होता है कि शायद सेवा के अभाव में यहाँ से प्रकट रूप में दूर चले गए। कोई जयपुर में चले गए, कोई नाथद्वारा में चले गए, कोई कहीं, किंतु हमारे राधारमण जी अनुग्रह करके जिए कहीं नहीं, इन लोगों की सेवा की परिपाटी दी है। उन्हीं की करुणा की मैं दो एक बातें मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ। गोपाल भट्ट पर कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा, हमारे गोस्वामी ने उसको किस रूप में ग्रहण किया है। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कवीराज गोस्वामी ने श्रीदरूप गोस्वामी का विदग्ध माधव का मंगलाचरण का वह श्लोक जो लिखा है उसी के ऊपर मैं दो एक बातें कहूंगा। उन्होंने लिखा है, अनर्पित चरिम चिराग करुण्यावतीर्ण फलो समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसान स्वभक्ति हरिहपूर सुंदर भूत कदम्ब संदीप सदा हृदय कंकरे स्फुरत मे प्रतिवत्स के नंद। ओ चैतन्य महाप्रभु की करुणा का क्या करना, इनकी अपार करुणा है। ये राधा कृष्ण स्वयं दोनों मिलित तन है। करुणयावतीर्ण कलौ, ये कृष्ण स्वयं गोलोक वृंदावन नाम से गोकुल ब्रज से करुणापूर्वक अवतीर्ण हुए। परम करुण कृष्ण, परम रसिक कृष्ण, परम करुण, यही हेतु यही हेतु कृष्ण लीला है। कृष्ण बड़े रसिक हैं और साथ साथ में करुणा के घन समुद्र है। इन करुणा के घन समुद्र होने के नाते और परम रसिक शेखर होने के कारण चैतन्य महाप्रभु अथवा श्री कृष्ण ही अपने ब्रजधाम के साथ अपने परिकरों के साथ ब्रजधाम से इस भूतल पर प्रकट हुए। कयो करुणा की रसा स्वादन के लिए चैतन्य महाप्रभु के बहुत से कारण है आने का जगत में, किंतु उनमें से प्रधान हमारे कृष्णदास कवीराज गोस्वामी ने चार कारण हो, जिसमें एक मुख्य एक गौण, मुख्य में भी दो गौण मुख्य गौण प्रधान और प्रधान में भी गौण प्रधान और प्रधान में प्रधान, जिसमें उन्होंने बतलाया धर्म की रक्षा के लिए दुष्कृति का विनाश करने के लिए, दुष्कृतियों को विनाश करने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए, युग धर्म का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अविभूत थे। और उसमें दूसरा बतलाया ये अनर्थ चरिंग चिराग करणी आवते रहे, अनुग्रह करके उन्नत उज्ज्वल स्वभक्ति श्री प्रदान करने के लिए। तीसरा कारण द्वैताचार्य का तुलसी दल लेकर समर्पण करना, आप यदि नहीं आएंगे तो मैं विश्व का संघ हार कर दूंगा, आपके द्वारा ही ये जगत में धर्म की प्रतिष्ठा होगी, स्वभक्ति का प्रचार होगा, युग धर्म का प्रचार इत्यादि होगा, दूसरों के द्वारा संभव पाएंगे। इन पाषंडों को विशेषकर तत्सामयिक पाषंडों की अवस्था देखकर अत्यंत विवल उठे भाव में और तुलसी दल और जल देकर के भगवान को आवेदन किया, उनका सिंहासन फिर उठा। कब आते, आते तो जरूर युग धर्म के लिए नाते हैं, कब आते किंतु उनका उनका यह निवेदन सुनकर, प्रार्थना सुनकर वो झट होकर से चले आए। और चौथा कारण अपने लीला माधुरी का आस्वादन करने के लिए, राधाया प्रणय महिमा की दृशोवा नहीं होगा इत्यादि, कृष्ण बड़े सुंदर बड़े मधुर है, उनके प्रति राधा जी का प्रणय भाव क्या है, उनका जो रूप माधुरी, लीला माधुरी, बेन माधुरी, गुण माधुरी, ये जो विशेष चार मधुरियां हैं, इनको श्रीमती राधिका जी कैसे आस्वादन करती है, और इन माधुरियों को आस्वादन करके उनको कौन सा सुख होता है, इन तीजियों के लोभ से श्री कृष्णचंद्र जी राधा जी की अंगकांति और भाव ये दोनों लेकर के जगत में अवतरित हैं। इसमें मैं पहले बतला रहा था करुणया भक्त न करो, कृष्ण लीला में उन्होंने ब्रज में आकर दास सख्य बात्सल्य मधुर इन रसों का आस्वादन किया, किंतु उनकी राधा जी की कृष्ण के प्रति कैसी प्रणय में महिमा है, और ये प्रणय क्या है, प्रेम स्नेह मान प्रणय अथवा प्रणय मान, ये प्रणय कैसा है, प्रणय में एक ममत्व की जरूरत होती है, सेवानुबंधी भाव ही ये ममत्व, जिसका जितना ही ममत्व अधिक रहेगा कृष्ण के प्रति उतना ही इन चीजों को वो समझ सकेगा, अनुभव कर सकेगा, ममता नहीं है प्रेम होगा ऐसा नहीं, ममता अतिशय अंकित, ममता उसमें अत्यंत प्रगाढ़ जितनी होगी उतना ही वह रस श्रेष्ठ होता है। चैतन्य महाप्रभु जी अर्थात कृष्ण ने देखा मैं प्रेम का विषय हूं और सब प्रेम के आश्रय, उन समस्त आश्रय में राधा जी सबसे श्रेष्ठ आश्रय है, लागनी की सार, लागनी का सार प्रेम, प्रेम का सार महाभाव, महाभाव का स्वरूप माधव महाभाव ही श्रीमती राधिका जी का स्वरूप, अतः जब तक इस भाव को मैं लेकर के जगत में नहीं आऊंगा तब तक इस आश्वासन नहीं कर सकता। यहां पर कुछ वक्तव्य यह है, हमारे कुछ महानुभावों का यह विचार है, गोलोकगत गोकुल ब्रज में राधा जी का पार्थिव भाव नहीं या गोपियों का पार्थिव भाव नहीं, केवल इस जगत में उसको लेकर के प्रकट होते हैं और इस जगत में आस्वादन करते कुछ मान्यताओं का ऐसा भी विचार है। किंतु श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का उन्होंने अमृत प्रवाह में ऐसा लिखा है कि ऐसा विचार होने पर भी यह विचार जरा ठीक नहीं जचता। जो चीज गोकुल में नहीं है वो इनकी प्रकट लीला में कैसे संभवपर हो सकता है। इसलिए यद्यपि ये कहा गया वैकुंठ आदित्य नहीं ये सब लीला प्रचार, वैकुंठ इत्यादि में इन लीलाओं का प्रचार नहीं है, यहां तक कि गोलोक में भी इस लीला का अधिक प्रचार नहीं है, रसा स्वादन नहीं है। विश्वनाथ चौपति ठाकुर जी ने अपने इसी श्लोक के टीका में उन्होंने बतलाया है, यद्यपि गोकुल के गोलोक के अंतर में गोकुल है किंतु गोकुल का वैभव गोलोक है। गोलोक में स्वकीय और ऐश्वर्य भाव है, कृष्ण का नित्य किशोर वहां है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं नित्य किशोर है वहां, किंतु उस पर उसमें स्वकीय भाव और उसमें कुछ ऐश्वर्य भाव है। और गोकुल में जो उसके हृदय स्थल है जिस गोकुल का यह गोलोक वैभव, उस गोकुल में ब्रज में या वृंदावन में तीन लीलाएं हैं, बाल्य लीला और गंड लीला और किशोर, तीनों लीलाएं वहां पर गोल वैकुंठ में तो बात ही क्या है, वहां का केवल ऐश्वर्य लीला है, वहां पर नारायण इत्यादि का जन्म इत्यादि नहीं है, न तो वहां पर और कोई रासलीला इत्यादि है। इसे चैतन्य महाप्रभु जी का या कृष्ण का इन लोगों से वैशिष्ट है। तो गोलोक में गोलोक से भी उसका हृदय स्थल, उसका मूल जो ब्रज गोकुल या वृंदावन है, इसमें कृष्ण की बाल्य लीला है। इसलिए नंद नंदत्व का वहां पर भाव भी है, कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्दान वृंदावन। गोलोक में वो एक गढ़खाई है, प्राचीर है, उसमें ये सब लीलाओं का वहां पर इस तरह का तारतम्य और वैशिष्ट रसमय भाव वहां पर प्रकटित नहीं है, किंतु गोकुल में ये सब लीलाएं हैं। इसको जानने के लिए यह भी जानना उचित है कि ऐश्वर्य लीला किसको कहते हैं, माधुर्य लीला किसको कहते हैं। भक्ति विशेष करके प्रेमा भक्ति, प्रेम प्रेम में दो चीज होती है, विशेष करके ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति जो स्वभावतः अनुराग है, जिसको रागात्मिक परिजन कहते हैं, उनमें एक संबंधात्मिक भक्ति प्रेम और दूसरा कामात्मिक प्रेम, ये दो चीजें हैं। जब तक ये संबंध नहीं रहता इन तीनों में, दाशक वात्सल्य इनमें संबंध संबंधात्मिक ये भाव है, इसमें संबंध की मर्यादा को तोड़ करके कृष्ण कुछ भी नहीं करते या उनके सेवक लोग भी नहीं करते, कुछ मर्यादा में बंधे हुए हैं। इसलिए संबंधानुगा में जो कृष्ण सेवा की वासना होती है वो मर्यादा के में बंधी हुई, वो संबंध से मर्यादित होती है। ये लोग अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार में कृष्ण की सेवा करें, उसका अतिक्रम नहीं कर सकते। और कामात्मिका में कृष्ण सेवा की वासना के अनुकूल या अनुगत होता है संबंध, या संबंध का मर्यादा होती है, उस मर्यादा में बंधन में नहीं ये लोग नहीं रहते, जैसे गोपियों ने पति सुतानुमय भ्रातृ ब्राह्मण अति विलंघते अंत अच्युता होगा, ये सबको बंधन इत्यादि के मर्यादाओं को वेद धर्म लोक धर्म लज्जा शील धैर्य सबको तोड़कर, इनकी हथकड़ी बेड़ियों को तोड़कर और कृष्ण से मिलने के लिए राज में उपस्थित हुए। इसलिए कृष्ण ने इसलिए कहा न पारे हम निरबद्ध संजुजा, मैं गोपियों कार्य कभी भी नहीं चुका सकता, अनंत काल की आयु होकर के भी देता हूं जैसी आयु पा करके भी, हे गोपी हे देवियों मैं आपके ऋण से कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, मैं सदा के लिए आता हूं। कृष्ण ने कहा जो कुछ मांग लो, मैं गोपियों ने कहा जो कुछ दे दो, तो अब वर मांगने के लिए भी कहने पर गोपियां क्या मांगेंगी, आप लोग तो यही मांगेंगे अपनी सेवा की दीजिए, इसलिए मैं कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। दूसरी बात, इसलिए भी पूर्ण नहीं हो सकता, गोपियां एकनिष्ठ हैं और कृष्ण कैसे हैं बहुनिष्ठ। कृष्ण ने गोपियों से प्रेम करने के लिए अपने भाई माता पिता बंधु या किसी भी एक तुच्छ से तुच्छ भक्त को भी नहीं छोड़ सकते, उसमें बंधे ही हैं। ये जथा प्रथंते ताम तथा बजाना, लेकिन उसमें बंधे ही हैं, किसी भी भक्त को किसी के लिए नहीं छोड़ सकते। और गोपियां पतियों को छोड़ दिया, पिता माता को छोड़ दिया, सास सासू को छोड़ दिया, लोक धर्म वेद धर्म मर्यादा जितनी प्रकार की मर्यादा है लोक लज्जा इत्यादि सबको तुच्छ के रूप में देकर और उनको छोड़ दिया। कृष्ण ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, वो बहुनिष्ठ उनको रहना ही होगा, किंतु गोपियों के लिए नहीं। यदि किसी को छोड़ दिया कृष्ण ने, लाखों को गोपियों में ही केवल ले लिया जाए, यदि सब गोपियों को छोड़ करके राधा जी के पास में रहते हैं, कहता है कि आपके अतिरिक्त हम किसी के पास नहीं जाए, तो बाकी कैसे हो जाए, इसके लिए तो ये सब जो लीलाएं हैं गोलोक के अंत प्रविष्ट में प्रकोष्ठ में, ये सब लीला वहां पर नित्य हैं। यदि वो लीलाएं वहां नहीं है ये सब, और कृष्ण वहां पर रसा स्वादन नहीं करते हैं, तो इस श्लोक में कैसे होगा, क्योंकि लिखा है कि कृष्ण जी ये 27वें चतुर्युग में द्वापर के अंत में ब्रज सहित हैया प्रकाश, ब्रज को लेकर के यहां पर आए, परिकरों को लेकर के आए, ब्रज से लेकर के आए, तो जत ब्रज में ही ये पार्थिव भाव और ये सब रस नहीं है, माधुर्य रस नहीं है, केवल जगत में ही आस्वादन करने के लिए महाप्रभु के रूप में आए या कृष्ण के रूप में आए, तो ये कैसे संभव है। इसलिए वहां पर समस्त लीला है, उस लीला को लेकर के इस जगत में कुछ समय के लिए इस वृंदावन में पधारा, वहां पर भी लीला चल रही है, यहां पर भी लीला चल रही है, ऐसे नहीं जो वहां पर खाली हो गया। गोवा किस लिए आए, करुण या अवतीर्ण कलऊ साधन जो है यहां के जीवों को भी कुछ दिया जाए, कुछ आस्वादन भी किया जाए। आस्वादन करने के लिए एक विशेष बात, वो देने की बात नहीं है, इसका हम पीछे विश्लेषण करेंगे, जो देने के लिए चीज है उसी को लेकर के आए, वो क्या चीज है इस श्लोक में वर्णन करते हैं। करुणाशयन का हृदय द्रवित हो गया और इस जगत में आए, महाप्रभु जी की करुणा के अवशिष्ट जितने अवतार हो गए हैं सभी अवतारों से है। रामचंद्र इत्यादि की तो बातें क्या, ये स्वयं तत्वतः एक होने पर भी रस वैचित्री के माध्यम से इन लोगों में भी भगवत्ता में भी तारतम्य है। चैतन्य महाप्रभु का की करुणा जब हम विचार करते हैं, तो स्वयं कृष्ण के प्रकट काल में उनकी जो करुणा प्रकटित नहीं हुई, वही कृष्ण के गौर रूप में वो करुणा प्रकाशित हुई। इसलिए करुणा से जाए। कैसी करुणा है देखिए, कृष्ण के समय में कृष्ण ने बड़े बड़े असुरों का संहार किया, उनको मुक्ति भी दी, पुतना जैसी राक्षसी को केवल बेश मात्र से माता का बेश बनाया और कपट देश में लेकर के उनको दूध पिलाने का भान किया, यद्यपि उसका उद्देश्य था उसको मारने के लिए, किंतु उसे एक धात्री उचितांग गति दे दी। ये किसी भी लीला में ये कभी सभी संभव करने हुई और दूसरे अवतार में, यहां तक कि कृष्ण ने लताओं को भी गुल्मों को भी कृष्ण का अतिरिक्त किसी भी अवतार में यह प्रेम नहीं दिया गया, सबको उन्होंने प्रेम किया। किंतु कृष्णचंद्र जी ने वो नहीं करना थी जो महाप्रभु की प्रेरणा है, यही हम लोग दिखला रहे हैं विषय आज का, ये असुरों को उन्होंने मारा, गतियां दे दी, किंतु उनको ये नहीं उस जन्म में उनको अनुभव न हो ये कृष्ण ने हमारे ऊपर में दया की, पुतनों को मारा, पुतना को मारा, आघासुर को मारा, बकासुर को मारा और सबको मारा, उनके जितने परिवार जन के लोग थे उन लोगों ने किसी ने अनुभव नहीं किया उस जीवन में जब कृष्ण ने दया इन पर की है। जब पुतना मरी तो उसका भाई बकी, बकासुर और अघासुर ये दोनों उसके भैया हैं, बदला लेने के लिए और कृष्ण पर वैसे ही अघासुर बन करके और बक बन करके उनका प्राण संहार करना चाहा द्वेष में भर। उसी तरह से महाभारत युद्ध में भी देखा जाता है, सब लोगों ने किसी ने भी उस जीवन में उनकी करुणा की उपलब्धि नहीं की और महाप्रभु पर गया। एक तो महाप्रभु जी ने किसी को प्राण से संघात नहीं किया, दूसरे दूसरे अवतारों में राम आदि अवतारों में उन्होंने धनुष बाण और चक्र और दूसरे दूसरे जिसो लोगों को असुरों का संघात किया, महाप्रभु जी ने किया, उनका आसुरिक भाव हरण कर लिया इसलिए वो हरी, और साथ साथ में उसमें प्रेम की बीज बो दी और लोगों ने उसी जन्म में अनुभव किया कि चैतन्य महा के प्रभु के हमारे ऊपर में कैसी कृपा है। सबसे पहले जगाई मधाई को लीजिए, वो लोग पशु श्रेणी के हैं, महाप्रभु ने उनका वध नहीं किया, बस हृदय से लगा लिया, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कहते 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 हरि बोल करते करते प्रेम में अधिक होकर के रुने लगे और चरणों में जुट गए, जगत को पवित्र बनाने वाले बन गए। महाप्रभु की करुणा की उपलब्धि की उसी जन्म में रूप सनातन के ऊपर में उन्होंने करुणा की, गोपाल भट्ट जी के ऊपर में उन्होंने करुणा की, त्रिमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती पर उन्होंने कृपा की, वेंकट भट्ट पर कृपा की, उन लोगों ने अनुभव किया। महाप्रभु जी दक्षिण देश में गए, कावरी के तट पर श्री अनुभव चार महीना वहां रहे, पहले जय मंदिर में गए, जबकि वो नित्य करने लगे आवेश में, सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा तो हमने सन्यासी और किसी को देखा नहीं, जो लोग थे देख रहे थे वो भी उनके साथ साथ में मिलकर के वो भी नित्य करने लगे, हरी बोल करने लगे, विशेष करके वहां के ये तीन भाई और उनके पुत्र गोपाल भट्ट जी उस समय बहुत छोटे थे, 11 वर्ष के थे, हमारे गौरकिशोर पूज्यपाद गौरकिशोर दास कृष्ण जी गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर गोपाल भट्ट का जीवन चरित्र पर और कुछ गोस्वामियों का उसमें परिचय है, बहुत ही सुंदर एक ग्रंथ लिखा है, आप लोग देखेंगे इसमें महाप्रभु जी की करुणा, उनका अवदान, गोपाल भट्ट गोस्वामी का की महत्ता इत्यादि के संबंध में उन्होंने बहुत भूरी भूरी लिखा है, बहुत ही सुंदर पुस्तक है, मैंने उसका थोड़ा साउंड से देखा, मैं भाव में निर्भर हो गया, बहुत यथार्थ में ये लोग विद्वान देखते हैं। महाप्रभु जी वहां गए, देखा तीन भाइयों ने, उन्होंने आकर्षित हुए, महाप्रभु जी ने ये स्थिर किया कि ये वर्षा का चार काल मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा, इसके बाद तो वहां ठहर गए। कावरों ने स्नान किया, दर्शन कर लिया। इन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पर आज प्रसाद लीजिए, दीक्षा हमारी यहाँ श्रीमल्ल भट्ट प्रबोधानंद सरस्वती और वेंकट भट्ट, ये सब बड़े बड़े विद्वान थे, अगाध विद्वान, शिष्य संप्रदाय के बहुत अगाध विद्वान थे। विशेष करके वेदांत शास्त्र में जो भक्ति का वेदांत वेदांत भक्ति शास्त्र है, इसमें पूर्ण पारंगत थे। वैसे लेखक भी थे, सुसाहित्य, संस्कृत के बहुत बड़े भारी विद्वान थे, धुरंधर और सिद्धांत में निपुण थे। महाप्रभु जी को अपने घर में रखा, महाप्रभु जी का आसन करते थे, प्रतिदिन इनका दर्शन करते थे श्रीरंगम में आकर मंदिर में, और महाप्रभु जी वहां पर है। वहां पर तो चुपचाप बैठने वाले नहीं है, कुछ ना कुछ तो प्रसंग करेंगे, उसी के लिए तो आए हैं। इन चारों को कृपा करने के लिए श्रीरंगम में गए। उन्होंने एक दिन पूछा, देखा क्या इन तीनों भाइयों में है तो बड़े विद्वान। कुछ लोग ये भी कहते हैं जैसे चैतन्य चैतन्य भागवत इत्यादि में है, चैतन्य चैतामित में तो ये वर्णन नहीं है, तीनों भाई वहां पर थे और गोपाल भट्ट थे। भक्ति रत्नाकर में ऐसा स्पष्ट लिखा है, वो भी एक प्रमाणित है, तीनों भाई वहां पर उपस्थित थे। महाप्रभु जी ने एक दिन उनसे पूछा वेंकट भट्ट से, उनको अभिमान था, इस बात का अभिमान था, पर तत्व नारायण कृष्ण नहीं, कृष्ण उनके अंश हैं, भागवत तो भी पढ़े हैं, शास्त्र भी पढ़े थे, किंतु उनमें विष्णु पुराण उनमें प्रमाणित माना जाता है, इसलिए उनको यह अभिमान था कि सबसे पर तत्व जो है, तत्व की पर अंतिम सीमा ये नारायण तत्व है, ये सरस्वत जैसा है। और कृष्ण की यही जो मत जो उनकी लीला है यही सर्वोत्तम है, वो अवतार नहीं लेते। महाप्रभु जी ने उनसे परिहास के रूप में सीधे सरल शब्दों में उनसे पूछा कुछ प्रश्न, लक्ष्मी जी क्यों नारायण को छोड़कर के और कृष्ण के राश इत्यादि में सम्मिलित होने की वासना करती हैं, उनकी सेवा करने की वासना उनमें क्यों है, बतलाओ तो। उन्होंने आज तक ऐसा प्रश्न ही नहीं सुना, कि कहां ऐसा लिखा है, कश्याम भाव अश्वनदेवित में है। बड़े सरल स्वभाव से महाप्रभु जी, किसी के साथ में महाप्रभु जी तर्क नहीं करते थे। काशी में भी आए पंडितों की सभा में, उन्होंने अपने आप तर्क नहीं आरंभ किया, उन्होंने तर्कों का कुछ उत्तर दिया, सामंजस्य किया। हमारे साधवम भट्टाचार्य से भी महाप्रभु जी ने कुछ तर्क वितर्क नहीं किया, बल्कि उनके विचारों का बड़े मधुर सबसे स्वाभाविक सरल सरल ढंग से उनका समाधान कर दिया, जिसका उत्तर उन लोगों के पास। महाप्रभु ने इसी तरह से तो प्रचार किया, बड़े बड़े विद्वानों को चौड़ी में झुका दिया, जगत देकर के आश्चर्य बना दिया। कुछ लोगों के साधु भट्टाचार्य जी, राय रामानंद जी, इधर में रूप सनातन जी, इधर में प्रकाशानंद सरस्वती जी, ऐसे लोगों का आकर्षण किया कि जगत अपने आप उनके चरणों में झुलक गया। तो उन्होंने बताया, देखो तत्वतः कृष्ण और नारायण एक ही तत्व, किंतु रस के द्वारा उनका तारतम्य है। एक ही चंद्र में 16 कलाएं होती हैं, ये कलाओं का अंतर जरूर मानना पड़ेगा, किंतु चंद्र में अंतर है ये नहीं मानना पड़ेगा। उसी तरह से भगवत्ता में तारतम्य है रस के विचार से, तत्वतः विचार वो नहीं है, तत्वतः एक ही तत्व है। इसलिए लक्ष्मी जी भी यदि ऐसा चाहती हैं कृष्ण के रूप पर, उनके गुणों पर, उनके माध्यम से प्रमुग्ध होती हैं, तो ये कोई बात नहीं। और उन्होंने श्रीमद् भागवत के सारे उदाहरण लेकर उनके सामने प्रस्तुत किए, आकर्षित महाप्रभु की तरफ हो गए, उनको शिष्य संप्रदाय से निकाल कर दिया और कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम रस में उनको सारा बोल कर दिया। ये चार व्यक्ति ही महाप्रभु के अंगद हो गए। ये जो कृपा की गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर में, जो उस समय के दिग्गज विद्वानों में से ये तीनों भाई थे, उनके ये पुत्र थे वेंकट भट्ट के, उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे कुलो। उन्होंने कुछ से उन समय कारिकाएं की थी, लिखी थी, उसी समय सत्संदर्भ, उसी समय में उन्होंने हमारे गोपाल भट्ट जी की बीज वहीं पर लिखा। उन्होंने महाप्रभु जी के आदेश से उनका संकलन उन्होंने किया, पीछे से यहाँ आकर के जीव गोस्वामी के द्वारा विशेष रूप में पूजा पर वो विषयों का उनके अनुसार में ये सठ संकल्प किए, किंतु मूल कृति उन्हीं की है। जीव गोस्वामी का भी कर्तित्व है किंतु उन्हीं का मूल है, यह जाता है उन्हीं के पक्ष में जाता है। हरिभक्ति विलास इत्यादि उसका उन्होंने संकलन उन्होंने किया हमारे सनातन गोस्वामी के निर्देश के अनुसार, जैसे जैसे गोस्वामी ने कहा, विशेष का रूप सनातन जी ने जैसा किया उनके आदेश का यहां किया। तो उनको कहां वो शिष्य संप्रदाय में ऐश्वर्य मार्ग के उपासक, और उनको ला दिया कृष्ण के रस में सारावोर कर दिया, राधा रमण की सेवा अर्पित कर दी, उनके लिए सालग्राम भी बन गए राधा रमण, उनके प्रेम में भी घोर करके बसीभूत हुए, ऐसा कहीं भूतों ने भविष्य ऐसा नहीं देखा जाता। ये महाप्रभु की करुणा उन लोगों ने उपलब्धि की, गोपाल भट्ट जी ने अनुभव किया, उनके ग्रंथों में ये सब चीजें हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को आप लोग जानते ही हैं। इसी तरह से जितने लोगों के ऊपर उन्होंने करुणा की, उन सब लोगों ने उन करुणा की उपलब्धि इसी जन्म में की और उनके चीर ऋणी बन गए। साधुम भट्टाचार्य से लेकर के प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि सभी उनके चीर ऋणी बन गए, उन्होंने अनुभव किया कृष्ण लीला में, अनुभव की बात नहीं। इसलिए उनकी कृपा से महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण ही हैं, इनकी महिमा का उनकी करुणा का कुछ उत्कर्ष है। दूसरी बात, कृष्ण लीला में ये देखा जाता है, ये जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यह। ताम तथैव भजाम्यह, कृष्ण की ऐसी प्रतिज्ञा, जो जैसा भक्ति करेगा उसके अनुरूप ही उसको फल देंगे, उतना ही फल देंगे। महाप्रभु में ये नहीं, महाप्रभु का करुणा का वैशिष्ट्य क्या है, उनकी करुणा का वैशिष्ट्य क्या है, प्रेम तो देते ही, जिसके पास में प्रेम नहीं उसको पात्र देकर के प्रेम भर देते हैं, ये महाप्रभु की विशेष करुणा है। जिनके अंदर में पात्र भी नहीं है उनको पात्र भी दे देते हैं, जिसके तरफ में देखा जहां जहां दूर दर्शन है, जहां ऐसे कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम ऐसे जा, अरे मनुष्यों की तो बात क्या, पशु प्रेम लता गुल्म हाथी तक मृग सबको कृष्ण प्रेम दे दिया। हाथी घुटने टेक करके कृष्ण कृष्ण कहने प्रेम में विभोर हो गए, चैतन्य महामूर्ति पर जिधर देखा उधर ही में प्रेम दे दिया। वो बाघ भालू क्या पात्र थे, इसलिए महाप्रभु जी करुणा ये वही कृष्ण ही करुणावतीर्ण करो, करुणा दान करने के लिए जगत में आए, इसलिए उन्होंने पात्रता दे करके पात्र भी दिया और प्रेम भी दे दिया। और कौन प्रेम दिया, जो ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम सबा कार्य जा सबका, ब्रह्मा का जो दुर्लभ प्रेम है, प्रेस्टो अभी असुलभम नारद प्रभृति जो उनके प्रेमी भक्त हैं, यहां तक कि उद्धव जो परम प्रेष्ठ उनके हैं, इन लोगों के लिए दुर्लभ और जगत के जीवों के लिए करुणा का कर्तव्य दे दिया। इसलिए करुणावतीर्ण करो, ये चैतन्य महाप्रभु करुणा करने के लिए ही, देने के लिए ही आए। क्या चीज देने के लिए, जो चीज आज तक बहुत दिनों तक नहीं दी गई। एक कल्प पहले जब चैतन्य महाप्रभु पिछली बार भी कृष्ण के बाद में अपनी लीला का प्रकाश किया, उस समय में दिया गया, और तब से अभी तक किसी ने नहीं दिया, कृष्ण लीला भी में नहीं दिया गया। प्रेम का आस्वादन उन्होंने किया, कुछ लताओं पताओं को दिया, किंतु व्यापक रूप में जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जो सामने आया उसी को कृष्ण प्रेम दिया, ऐसा नहीं दिया। गौर नित्यानंद है ना ही ए सब चीचा, चैतन्य महाप्रभु अवतार वह प्रेमामृत बन्या, ए बन्या जैना भाषे से जीव खार, कोटि कल्प जन्म नहीं तहार उद्धार, किंतु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद देना ही ए सब नाम लेंगे प्रेम दें वह अस्तुधार। ये चैतन्य महाप्रभु की करुणा का वैशिष्ट है, इसलिए करने आवतीन न करो, चैतन्य महापुरुष करना के लिए सबको पात्र भी दिया और भर भर करके प्रेम दिया, जो ब्रह्मा इत्यादि के लिए, नारद इत्यादि के लिए, यहां तक उद्धव के लिए भी जो चीजें संभव नहीं था वो देने के लिए, क्या देने के लिए, इतने दिनों के बाद में जिसको जदे कभी कांप गए, उनका हाथ नहीं चला, कृष्ण स्वयं आकर के लिख दिया, वो क्या है, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लव मुदा। वो जगह नहीं लिख सके, उनका हृदय कांप गया। राधा जी उनकी शक्ति है, राधा जी को कैसे कहेंगे कि अपने चरण हमारे सिर पर रख दो, मैं तुम्हारे चरणों में अपना शीश नवाता हूं, मुझे क्षमा करें। जयदेव नहीं लिख सके, इसलिए पहले ये सब चीजें नहीं थी, महाप्रभु के बाद ही आने के बाद में हमारे गोस्वामियों ने ऐसा लिखा जे कृष्ण क्या करते हैं, हमारे प्रबोधानंद सरस्वती जी लिख रहे हैं, जत्किं करीष बहुशः फलुका अपमान नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्ड मौले जस्याकदा सुन्धे विशुभान जाया तत्के कुंज भवनांगत मार्जनिष्यामि। ये लिख सकते हैं जयदेव गोस्वामी, जब उतना ही नहीं लिख सके तो ये सब क्या लिखेंगे। रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी की तो बात ही क्या, खास कमरे के लोग हैं ये, मंजरी यहां अपनी है, इसलिए इन लोगों ने चीज जो लिखा है महाप्रभु के पहले किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, ऐसा साहस नहीं हुआ, ऐसे अपना कलम उस पर लिख दे। रूप गोस्वामी ने तो, रूप गोस्वामी कैसे कहते हैं, हो श्रीमती राधिका जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि देखो आएगा ना काला, उसको मत आने देना यहां, वो स्त्री भेष बना करके सुबल आएगा, सुबल जैसा, इसलिए उसको सुबल का जो सखा कृष्ण जो स्त्री का भेष बना करके आएगा, कुंज के द्वार पर से रोक देना, कभी खबरदार हमारे यहां मत आने देना। और कृष्ण वहां पहुंच करके हाथ जोड़ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी दासी का तो राधा जी की तो बात, इसलिए ये सब प्रेम का प्रचार नहीं था, महाप्रभु के आने के बाद में हुआ, इसी प्रेम को देने के लिए महाप्रभु जी आए। इसलिए यहां पर कह रहे हैं समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल अर्षां स्वभक्ति श्रियं करुणया करुणा पूर्वक, उस चीज को जो ब्रह्म इत्यादि के लिए अभी जो पहले बतलाया सबके लिए जो सुलभ नहीं था, वह प्रेम देने के लिए महाप्रभु जी समर्पयितुम वो आए करुणा कि किस चीज को देने के लिए आए, उन्नत उज्जवल रसान स्वभक्ति सियन, उन्नत और उज्जवल रस, उन्नत क्या जो सब प्रकार से उन्नत है, चार प्रकार के भाव बतलाए गए हमारे भक्ति में स्वामी सिंधु में बतलाए गए, शांत को अभी छोड़ देते हैं, दास सप्त दास दो, ये सभी उन्नत है, विशेष रथ के ब्रज के ये भाव है, वैकुंठ इत्यादि में भी नहीं है, पहले बतलाया गया, इनमें भी दास से सख्य, सख्य से बासल्य और बासल्य से मधुर उन्नत है, किस लिए, सेवा की वासना से, जिसमें जिस प्रेम में ममत्व अधिक है, ममता अति अतिशयांकित और चित्त को द्रवित कर देता है, यह भाव जिसमें रहेगा ममता अधिक रहेगी वो उन्नत है, इसलिए क्रमशः इनसे मधुर रस सबसे उन्नत है। दूसरी बात रस भी इसी प्रकार से रस रहेगा, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस, मधुर को ही उन्नत उज्ज्वल रस कहते हैं, है तो वहां पर सभी रस है सुंदर, एक एक से मधुर हैं, कृष्ण को तृप्त कर देते हैं, किंतु फिर भी उन्नत उज्ज्वल से संबंधित रहता है, उसको बताते हैं मधुर रस, वो क्यों का है? उसमें सभी हैं, जैसे पंचभूतों का उदाहरण देकर के बतलाया, समय हो रहा है इसलिए 5 बजे से आरती होगी, तो मैं समाप्त कर दूंगा, 10-5 मिनट तो कहते हैं उज्ज्वल किसको कहते हैं, सभी रस तो उज्ज्वल ही हैं, उन्नत और उज्ज्वल सभी हैं, चारों एक एक से हैं, किंतु फिर भी जब हम विचार करते हैं रस की दृष्टि से, ममता की दृष्टि से, तो ममता की दृष्टि से सब दास्य की अपेक्षा सख्य, असख्य से अपेक्षा वात्सल्य, वात्सल्य से अवधार ममता मधुर है, गोपियों है। इसका चैतन्य चरितामृत में विशेष रूप से ये सब वर्णन किया गया। मैं ये सब बतला रहा हूं महाप्रभु की करुणा के लिए, करुणा का अवदान बतलाने के लिए मैं बतला रहा हूं, पहले इस चीज को समझ लिया जाए। इसलिए कहते हैं कि उज्ज्वल किसको कहते हैं, कोई चीज निर्मल होने पर उन्नत उज्ज्वल होती है, जैसे कांच निर्मल होता है, सूर्य की रश्मियों का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है तो वह झकझक करता है, उसके तरफ हम देख नहीं सकते, तो सभी उन्नत हैं, ये चारों ही निर्मल हैं, ब्रज का जितना भाव है सभी निर्मल, किंतु फिर भी तात्पर्य है। ये तात्पर्य किस लिए है, सेवा की वासना जिस रस में प्रतिबिंबित होने पर और वो झकझक करता है उसके ऊपर में निर्भर करता है, कृष्ण की सेवा की वासना यही मूल चीज है भक्ति, यही जीवों का अनुबंधी भाव है। जीव में भी अणु अणु रूप में, आच्छादित रूप में, लेटेंट रूप में ये है, और नित्य मुक्तों में कृष्ण के परिकरों में तो वो प्रस्फुटित रूप में, विशेष करके गोपियों में प्रस्फुटित से भी प्रस्फुटित सुगंधित।